नमस्कार भारत, तारीख 11 अगस्त दिन मंगलवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर धमाके के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा, पाकिस्तान से आ रहे हैं जंग के संदेश। निजता का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है, मुद्दे पर जारी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला।
स्वास्थ्य का अधिकार संविधान में कहीं लिखा नहीं गया, लेकिन कई सारे निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार है। अब आपका पासपोर्ट लेने का अधिकार और विदेश जाने का अधिकार।
नीतीश कुमार ने कहा, 50 लाख बिहारी अपने डीएनए के सैंपल भेजेंगे प्रधानमंत्री मोदी को, ले चलेंगे आपको ठुमरी महोत्सव में। खबरें और भी होंगी कार्यक्रम में, लेकिन थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राजधानी काबुल में हुए चरमपंथी हमलों के लिए पाकिस्तान की तीखी आलोचना की है। अफगानिस्तान के सरकारी टीवी पर प्रसारित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि पाकिस्तान में आत्मघाती हमलावरों के प्रशिक्षण शिविर और बम बनाने वाली फैक्ट्रियां हमेशा की तरह सक्रिय हैं। कल ही काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक कार बम विस्फोट में 5 लोग मारे गए और कई घायल हुए थे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने एक समिति को नियुक्त किया है जो उन्हें भ्रष्टाचार से निपटने और कानूनी व्यवस्था में सुधारों पर परामर्श देगी। 7 सदस्यों वाली इस समिति में ज्यादातर लोग शिक्षाविद हैं। राष्ट्रपति बुहारी इसी साल मई में राष्ट्रपति चुने गए थे और उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने का वादा किया था। उन्होंने पहले यह भी कहा था कि पिछले दशक में सरकारी अधिकारियों ने सरकारी खजाने से अरबों डॉलर्स की चोरी की है। स्वीडन की पुलिस ने स्टॉकहोम में एक फर्नीचर की दुकान में 2 लोगों की हत्या के शक में 2 को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि एक संदिग्ध को इस दुकान के बाहर एक बस स्टैंड से पकड़ा गया, दूसरे संदिग्ध को एक अस्पताल से हिरासत में लिया गया जहां वह चाकू से लगे घावों का इलाज करवा रहा था। पुलिस अभी हत्या की वजह का पता नहीं लगा पाई है, लेकिन ये हत्याएं चरमपंथ से जुड़ी नहीं लगती। पुलिस अधिकारी पेर आग्रेन ने बताया, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो एक आदमी और एक औरत चाकू के वार से गंभीर रूप से घायल थे। बाद में उनकी अस्पताल में मौत हो गई। हम अभी पीड़ितों का ब्यौरा नहीं दे सकते। इस हत्या के 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन हत्या के पीछे क्या वजह थी इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये थे पेर आग्रेन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की में कल एक के बाद एक कई बम विस्फोट हुए। तुर्की के सैन्य अधिकारियों ने सिरनौक के उत्तरी प्रांत में एक सड़क पर हुए बम विस्फोट के लिए कुर्द लड़ाकुओं को दोषी ठहराया है। इस हमले में 4 पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में रेवोल्यूशनरी पीपल्स लिबरेशन आर्मी फ्रंट ने अमरीकी वाणिज्य दूतावास पर हमले की जिम्मेदारी ली है। इस्तांबुल में ही पुलिस स्टेशन पर हुए एक बम विस्फोट में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। इराक से मिल रही खबरों के मुताबिक बगदाद के उत्तर पूर्व में स्थित दियाला प्रांत में हुए 2 बम विस्फोटों में कई लोग मारे गए हैं। बकूबा के एक बाजार में कार बम के फटने से 30 से भी ज्यादा लोग मारे गए, जबकि दूसरा विस्फोट आत्मघाती हमला था। कनान के रिहायशी इलाके में आत्मघाती हमलावर ने खुद को बम से उड़ा दिया। पिछले महीने ही दियाला के एक बाजार में इस्लामिक स्टेट के हमले में 150 लोग मारे गए थे। फुकुशिमा हादसे के 4 साल बाद जापान पहली बार परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल से बिजली पैदा करने जा रहा है। क्यूशू इलेक्ट्रिक पावर कंपनी अपने सेंदाई प्लांट में परमाणु विखंडन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर रही है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। बड़ी खबर, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राजधानी काबुल समेत देश में हो रहे लगातार चरमपंथी हमलों के लिए पाकिस्तान को सीधे तौर पर दोषी ठहराया है। उनका बयान ऐसे वक्त आया है जब कल काबुल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास तालिबान के एक कार बम धमाके में 5 लोग मारे गए, कई घायल हुए। हाल ही में ऐसे हमलों में मारे जाने वालों की तादाद 50 हो गई है। राष्ट्रपति गनी का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि चरमपंथियों से शांति वार्ता में पाकिस्तान सहयोग देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए प्रगति सक्सेना से।
अफगानिस्तान के सरकारी टीवी पर प्रसारित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान की तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में चल रहे आत्मघाती हमलावरों के प्रशिक्षण शिविर और बम बनाने वाली फैक्ट्रियां हमेशा की तरह सक्रिय हैं। हालांकि पाकिस्तान काफी समय से इन आरोपों का खंडन करता आया है। उनका ये बयान उस समय आया है जब एक तरफ अफगानिस्तान चरमपंथी गुट तालिबान से शांति वार्ता की तैयारी कर रहा था और दूसरी तरफ तालिबान के नेता मुल्ला उमर की मौत की खबर आई। ये शांति वार्ता भी पाकिस्तान में ही करने की योजना थी और दोनों पक्षों में एकाध दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन मुल्ला उमर की मौत के बाद ये प्रक्रिया फिर धीमी पड़ गई। राष्ट्रपति गनी ने कहा कि उन्होंने शांति स्थापित करने की उम्मीद की थी, लेकिन काबुल को पाकिस्तान से सिर्फ युद्ध के संदेश ही मिल रहे हैं।
तसामीमे के दौलत पाकिस्तान दर हफ्ताहाय आइंदे मिगिरद मितवानद बर रवाबित दो किश्वर।
राष्ट्रपति गनी कह रहे हैं, आने वाले हफ्तों में पाकिस्तानी सरकार जो भी फैसले लेती है उनका असर आने वाले दशकों में दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ेगा। अब हम अपने लोगों का खून एक ऐसी लड़ाई में बहते हुए नहीं देख सकते जो विदेश से लाकर हम पर थोप दी गई है। हमने अमन की उम्मीद की थी, लेकिन पाकिस्तान से हम पर चढ़ाई की जा रही है। ये दरअसल एक पड़ोसी देश का साफ तौर पर दुश्मनों जैसा बर्ताव है। राष्ट्रपति गनी ने कहा कि जैसे पेशावर में हुए धमाके और सैकड़ों मासूम बच्चों की हत्या को पाकिस्तान के इतिहास में एक मील का पत्थर माना गया है, वैसे ही काबुल में हुए हाल के हमले भी अफगानिस्तान के लिए बहुत अहम हैं और दुखद हैं। ये जानना और भी कष्टप्रद है कि चरमपंथी आज भी पाकिस्तान में अपने हमलों की योजना बनाते हैं और उसके लिए प्रशिक्षण भी पा सकते हैं। राष्ट्रपति गनी ने सख्त शब्दों में कहा कि अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान के अधिकारियों को उन लड़ाकुओं के खिलाफ तत्काल ठोस कदम उठाने होंगे जो देश के भीतर से इन गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं।
मुख पाकिस्तान न दगवाड़ो चहागा हलाकत बंदे चाहे अफगानिस्तान मुकाबल के बगावत की दी।
हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी सरकार उन संगठनों के खिलाफ व्यावहारिक और ठोस कदम उठाए जो पाकिस्तानी इलाके से अफगानिस्तान के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं। राष्ट्रपति गनी के शब्द। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने पहली बार इतने कड़े और साफ शब्दों में पाकिस्तान पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि अब अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने फायदे के लिए कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना अन्य देशों के लिए मुश्किल होगा।
तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश में हो रहे लगातार चरमपंथी हमलों के लिए पाकिस्तान को सीधे तौर पर दोषी ठहराया। रुख भारत का। उम्मीद की जा रही थी कि कल जब संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी तो बीते तीन हफ्तों से जारी गतिरोध खत्म हो जाएगा और संसदीय कामकाज हो सकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तक कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह उनसे दूर होते नजर आए। कुछ और दलों ने भी संसद में कांग्रेस के रवैये का विरोध करते हुए बहस का स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस अपने विरोधी रवैये से टस से मस नहीं हुई। संदीप सोनी की रिपोर्ट।
हमेशा स्पीकर चाहता तो बंद हो जाता, बुला लिए इनको, हमें सबको बुला लिए, अभी बंद हो जाएगा। जब बुलाते ही नहीं आप,
बुलाया है। आप
संसद में जारी गतिरोध के बीच लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बैठक बुलाई जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू समेत कुछ अन्य दलों के प्रमुख नेता शामिल हुए। बैठक के बाद भी कांग्रेस सरकार के विरोध के अपने रास्ते से हटने पर तैयार नहीं हुई और इसके बाद मुलायम सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी संसद में कांग्रेस के विरोध का समर्थन नहीं करेगी। मुलायम सिंह के इस रुख से संकेत मिला कि भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मोदी सरकार को घेर रही कांग्रेस अब कुछ अलग थलग पड़ रही है, लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद,
जेडीयू ने भी और समाजवादी ने भी सरकार का विरोध किया और कहा कि आपने कोई प्रयास नहीं किया।
कांग्रेस ललित मोदी मामले में बीते तीन हफ्ते से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस मुद्दे पर हंगामे की वजह से कांग्रेस के 25 सांसद 5 दिन के लिए लोकसभा से निलंबित हो चुके हैं, लेकिन कल निलंबन समाप्त होने के बाद यही सांसद जब लोकसभा पहुंचे, उन्होंने ललित मोदी विवाद और व्यापम घोटाले के विरोध में सरकार के खिलाफ सदन में नारे लगाए और काली तख्तियां दिखाई। संसद से बाहर निकलकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा,
सुषमा स्वराज जी, आपके बैंक अकाउंट में, आपके परिवार के बैंक अकाउंट में ललित मोदी जी का कितना पैसा आया है, सीधा बता दीजिए, हाउस चल जाएगा।
इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सुषमा स्वराज के बहाने संसद का कामकाज बाधित कर रही है।
सुषमा स्वराज केवल कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहाना है। उनका सही उद्देश्य यह है कि इस सत्र में जीएसटी का संविधान संशोधन पारित ना हो, उसको रोकना कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट उद्देश्य है।
इन सब बयानबाजियों के बीच कल ही कांग्रेस ने ललित मोदी विवाद में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि नरेंद्र मोदी और ललित मोदी के करीबी संबंध थे।
2010 को ललित मोदी जी गुजरात जाते हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह सेट्स अप अ मीटिंग बिटवीन अडानी एंड ललित मोदी।
कांग्रेस जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ललित मोदी के प्रति नरम रवैया अपनाने का आरोप लगाती रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इससे इनकार करती आई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर बीते 3 हफ्ते से जारी है और संसद के मानसून सत्र में केवल 3 दिन बचे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लोकसभा में 44 सीटों पर सिमटी कांग्रेस को ललित मोदी और व्यापम घोटाले जैसे मुद्दे शायद दोबारा न मिले, इसलिए वो सरकार के विरोध के रास्ते से टस से मस नहीं हो रही।
अब नजरें एक बार फिर से संसद पर होंगी कि कार्यवाही आज चलती है या नहीं, या फिर शोर शराबे की भेंट चढ़ जाती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत नहीं आता, क्योंकि संविधान के 3rd खंड में इसकी अलग से व्याख्या नहीं की गई है। इस मुद्दे को लेकर चल रही बहस के बीच आज सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है। इस पूरे मामले पर क्या है खींचातानी, सुनिए बीबीसी संवाददाता सलमान रावी से।
आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि निजता के अधिकार जैसी कोई चीज संविधान में उल्लेखित नहीं की गई है। मगर न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों वाली खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये दलील रखने वाले भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का कहना है कि निजता के अधिकार को लेकर असमंजस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न खंडपीठों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। कभी संवैधानिक पीठों ने कहा है कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो कभी कहा है कि ये मौलिक अधिकार है।
धार में मैंने 2 जजमेंट दिखाए, एक 66 का है और एक 54 का है।
रोहतगी कह रहे थे कि 1954 और 1963 में सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग खंडपीठों ने अपने फैसलों में कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। उनका कहना था कि अदालतों के अलग अलग रुख की वजह से एक उहापोह की स्थिति बन गई है। सरकार की तरफ से दलील रखते हुए अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि चूंकि 8 सदस्यों वाली खंडपीठ ने कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए इस मामले को 9 सदस्यों वाली खंडपीठ के पास भेजा जाना चाहिए ताकि इस पर कानून स्पष्ट हो। मगर कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के वेंकटेश नायक कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग खंडपीठों के फैसलों को साथ में पढ़ने की जरूरत है, और ये भी कि सरकार की दलील में दम नहीं है।
मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई गैप है, ये एक तरह का जुरिस्प्रूडेंशियल एवोल्यूशन है जो अपने आप में साफ नजर आता है अगर आप इन सारे निर्णयों को साथ में पढ़ेंगे। अगर कहीं पे भी आपको अपने दलील को मजबूत करने के लिए किसी निर्णय से 2 लाइन यहाँ से ले लिया, फिर 2 लाइन किसी और निर्णय से ले लिया और फिर उनको जोड़ के आपने एक कथन बना दिया, तो तब तो लगेगा ये कि गैप है। जुरिस्प्रूडेंशियल डेवलपमेंट को देखिएगा, और साथ ही साथ जो रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे पिटिशनर्स को दिए उनको भी अगर आप देखेंगे तो उसके मुताबिक ये तो स्पष्ट रूप से साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि राइट टू प्राइवेसी जो है मौलिक अधिकार है ही।
वेंकटेश का कहना था कि बहुत सारे मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है।
स्वास्थ्य का अधिकार संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन कई सारे निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार है। अब आपका पासपोर्ट लेने का अधिकार और विदेश जाने का अधिकार, ये संविधान में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि आपका आपके मौलिक अधिकार हैं, लेकिन कई सारे ऐसे निर्णय आए हैं सर्वोच्च न्यायालय के, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के भी निर्णय आए हैं जिन्होंने बोला है कि ये सारे अधिकार जो हैं ये हमारे जीने के और हमारे व्यक्तिगत आज़ादी के मौलिक अधिकार में ये शामिल ही नहीं।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार सूरत सिंह मानते हैं कि अमरीका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो सिर्फ संविधान में उल्लेखित हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ही बुनियादी हैं।
अमेरिका में 1965 में ग्रिस्वोल्ड वर्सेस कनेक्टिकट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। यहाँ भी कानूनी तौर पर भी अगर वैसे भी आप देखें, जब इंसान के जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेचुरल राइट होते हैं, लॉ को उनको रिकॉग्नाइज करना ही होता है। वो राइट इसलिए नहीं है कि लॉ ने दे दिए, बल्कि वो राइट इसलिए कि दे आर सो फंडामेंटल। जैसे बहुत फेमस ए सी डायसी ने इंग्लैंड के संदर्भ में कहा है कि क्योंकि इंग्लैंड में तो रिटन लॉ नहीं था, वो ये कहता है कि कुछ राइट्स जो हैं वो इतने फंडामेंटल होते हैं कि लॉ उसको रिकॉग्नाइज करता है, क्रिएट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना भी कहे तो क्या ये हम मानेंगे नहीं कि राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट है?
अब सब कानूनविदों की निगाहें न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यों वाली खंडपीठ पर टिकी हैं। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मौजूदा खंडपीठ सरकार की दलील को खारिज कर देती है या मामले को 9 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ को सौंप देती है। सलमान रावी, BBC, दिल्ली।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 50 लाख बिहारी अपने DNA के सैंपल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेंगे। नीतीश कुमार का ये बयान प्रधानमंत्री मोदी के मुजफ्फरपुर में पिछले महीने दिए गए उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के DNA पर सवाल उठाया था। नीतीश कुमार क्यों DNA और कथित बिहारी अस्मिता के मुद्दे पर इतना जोर दे रहे हैं? क्या इससे उन्हें सियासी फायदा होगा? सुनिए मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
शायद ये पहला चुनाव हो जिसमें DNA को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार पिछले महीने जब बिहार आए थे तब उन्होंने मुजफ्फरपुर की परिवर्तन रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के DNA पर सवाल उठाया था। इस आलोचना को बिहार और बिहार के लोगों का अपमान बताते हुए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से ये बयान वापस लेने की मांग कर रहे थे और ऐसा नहीं होने पर कल नीतीश कुमार ने शब्द वापसी अभियान की बकायदा घोषणा भी कर दी। नीतीश कुमार ने ट्विटर पर अपने संदेश में कहा कि शब्द वापसी की इस मुहिम में बिहार के कम से कम 50 लाख लोग हस्ताक्षर अभियान से जुड़ेंगे और DNA टेस्ट के लिए अपना सैंपल भी नरेंद्र मोदी को भेजेंगे। इस अभियान पर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव कहते हैं,
बिहार के अस्मिता पर चोट किया DNA का करके, ये बिहार के लिए बहुत पीड़ादायक बात है। मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा कि कम से कम बिहार के लोग पीड़ित है, आप उस शब्द को वापस ले लीजिए। ये ऐसा नहीं होता है कि हमारे DNA में दोष मानिए, ये तो बिहार के अस्मिता का, बिहार के मान सम्मान पर चोट पहुंचाने का प्रधानमंत्री जी ने काम किया है।
इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार के पास मुद्दों की कमी हो गई है, इसलिए वे DNA वाली बात का बतंगड़ बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद नारायण झा,
जो असफलताएं हैं इस सरकार की पिछले 2 साल से, इसलिए वो मुद्दों की तलाश कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि ये मुद्दा उन्हें मिल गया है, लेकिन ये असफल प्रयास है। प्रधानमंत्री जी ने पॉलिटिकल DNA की बात की थी, किसी परिवार के और किसी ब्लड के DNA की बात नहीं की, और यदि उसको यही व्याख्या करना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, तो दुनिया में सबको पता है कि DNA ऐसी चीज है जो किसी 2 व्यक्तियों का DNA बराबर नहीं होता।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर ये कहते रहे हैं कि वे विकास कार्यों के नाम पर जनता से जनादेश मांगेंगे, लेकिन क्या वजह है कि विकास के नाम पर वोट की बात करने वाले नीतीश कुमार मोदी के DNA वाले बयान पर इतना जोर दे रहे हैं? क्या नीतीश कुमार इस मुद्दे को चुनाव में भुना पाएंगे? सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन कहते हैं,
नीतीश का जो पूरा इलेक्शन कैंपेन है वो अगर आप ध्यान से देखें तो लगता है कि वो थोड़ा सा बहुत उलझन में है, दिशाहीन है। एक ओर उनको BJP पर प्रहार करना है, दूसरी ओर उनका एक बहुत बड़ा कंपटीटर जो है उनके LID है, लालू जी है, तो थोड़ा उनसे भी अलग वो एक अपना जो इमेज है, अपना जो एजेंडा है सुशासन और विकास का और जो बिहारी अस्मिता को, वो भी वो उसको रखना चाहते हैं।
वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब नीतीश कुमार ने बिहारी अस्मिता का सवाल उठाया है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने बिहारी अस्मिता के मुद्दे को भुनाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन चुनावी नतीजे बताते हैं कि उन्हें इससे कोई फायदा नहीं हुआ।
ये थी मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट। और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है कि अखबारों के पन्ने पलटे जाएं। प्रगति सक्सेना मौजूद है, अखबार भी हैं आपके पास, क्या कह रहे हैं अखबार?
अखबारों में जो आज प्रमुखता से ली गई खबरें हैं वो एक तो है कि संसद में जो कार्रवाई हुई, सांसद लौटे जो निलंबित हो गए थे, और लेकिन तनातनी अब भी कायम है। राहुल ने कहा है कि सुषमा पहले लेन देन का ब्यौरा दें, तब वो चलने देंगे सदन। दूसरी तरफ सपा नेता मुलायम सिंह ने कहा है कि अगर कांग्रेस हंगामा करती रही तो सपा कांग्रेस का साथ नहीं देगी। दूसरी खबर है कि सरकार ने कहा है कि पॉर्न वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, क्योंकि वो बेडरूम में नहीं जा सकती और वह नैतिक पुलिसिंग नहीं करेगी। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आप विधायक अलका लांबा पर एफआईआर हो गई है, जबरन घुसने एक दुकान पर जबरन घुसने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए। दिल्ली सहित उत्तर भारत में भूकंप के झटके आए हैं। जनसत्ता की एक खबर है कि नेट की धुन में बड़े अवगुण, यानी कि अगर आप नेट ज्यादा देखते हैं, इंटरनेट सर्फिंग ज्यादा करते हैं, तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है। दूसरी बड़ी खबर है भास्कर, जागरण और अमर उजाला में कि राजस्थान हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है कि जैन धर्म में संथारा अब अपराध मान्य है, क्योंकि कोर्ट ने इस प्रथा को आत्महत्या माना है।
और ये जो प्रथा है जो वहाँ पर लोग रहते हैं, इसमें कोई भी जो व्यक्ति है वो अन्न जल का त्याग करता है और उसके बाद वो अपनी जिसको कहते हैं कि मौत को खुद आमंत्रण देता है।
मोदी को डीएनए सैंपल भेजेंगे, भास्कर में इसका जिक्र है। नीतीश कुमार ने कहा है इस बात को। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि मंदिर परिसर में अब मरम्मत की इजाज़त दे दी गई है और वहाँ लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं तैयार करने की इजाज़त भी हो गई है। दिल्ली के कोर्ट ने कहा है कि शराब पीकर जो गाड़ी चलाते हैं वो सुसाइड बॉम्बर कहे जा सकते हैं। दाऊद की वापसी पर जनसत्ता में खबर है कि दाऊद की वापसी पर चर्चा हुई थी यूपीए सरकार के दौरान, उसमें जो वरिष्ठ सलाहकार थे प्रधानमंत्री के, उन्होंने मनमोहन सिंह से इस बारे में चर्चा की थी। हालांकि मनमोहन सिंह का कहना है कि इस चर्चा के बारे में उन्हें कुछ याद नहीं है। लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिला, सवार लोगों की तलाश जारी।
370 की बात
जी नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में एक हेलीकॉप्टर जो गिर गया था, अभी उसका मलबा मिल गया है अरुणाचल प्रदेश के जिले में।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रगति। दिल्ली में साहित्य कला परिषद ने हाल ही में 3 दिवसीय ठुमरी महोत्सव का आयोजन किया। इसमें हर साल की तरह इस बार भी भारत के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिसमें कि पंडित छन्नूलाल मिश्र और ठुमरी की रानी कही जाने वाली गिरजा देवी जैसे कलाकार भी शामिल थी। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की रिपोर्ट।
तालियों से गूंज उठा कमानी ऑडिटोरियम जब पंडित छन्नूलाल मिश्र ने अपने अंदाज में गाया। इस उत्सव में पंडित छन्नूलाल मिश्र के अलावा काकोली मुखर्जी और आरती अंकलीकर जैसे कलाकार भी शामिल थे। दिल्ली सरकार साहित्य कला परिषद ने 7 से 9 अगस्त के बीच 3 दिवसीय ठुमरी उत्सव मनाया। साहित्य कला परिषद के उपसचिव सिंधु मिश्रा,
अब हम देख रहे हैं कि पॉपुलर की जिस तरीके की धाराएं हो गई हैं, फ्यूजन बैंड्स हो गए हैं, पॉपुलर म्यूजिक बिल्कुल ही एक अलग लाइट म्यूजिक हो गया है। महसूस ये किया गया ओवर द इयर्स, ठुमरी के गायक ही नहीं रहे, तो ठुमरी जो लोक से जुड़ी हुई विधा थी वो बिल्कुल ही गायब सी हो गई। तो ये पिछले 4-5 साल से साहित्य कला परिषद ने ठुमरी फेस्टिवल को शुरू किया। फेस्टिवल हम 2 साल कर चुके, फिर हमें पूरे हिंदुस्तान से ठुमरी के आर्टिस्ट की रिक्वेस्ट आने लगी कि हम भी गाते हैं। इस तरीके से ये दोबारा से मैं कहूँगी कि एक तरह से मैं रिवाइवल देखती हूँ इससे ठुमरी का।
ठुमरी उत्सव की दूसरी संध्या को अपनी आवाज से खूबसूरत बनाया अंजलि पोहनकर, देवाशीष डे और गुलाम सादिक खान जैसे कलाकारों ने। उत्सव के आखिरी दिन दर्शकों की भीड़ का नजारा ही कुछ और था। क्योंकि सबको इंतजार था ठुमरी की रानी गिरिजा देवी जी का। बनारस घराने से संबंधित भारत की प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी।
अब मैं अभी थोड़ा दिन तक थोड़ा आराम करना चाहती थी, लेकिन दिल्ली से खास करके मेरा बहुत प्यार है, क्योंकि 1952 से मैं आती हूँ यहाँ, 52 से, आज मुझे 65 बरस के करीब हो गया थे, तो एक प्यार बना हुआ है हमारे श्रोताओं में और मेरा, तो मैं ना नहीं कर पाई, चली आई हूँ।
गिरिजा देवी जी जब गायन के बाद अपने प्रशंसकों से मिली तो उन्होंने कहा
कि जिस ठुमरी को लोग बहुत छोटी चीज समझते थे, आज उसे ऊपर लाने के लिए साहित्य कला परिषद या हमारी भारत सरकार या हमारे सिंधु मिश्रा ये लोग जो प्रयास कर रही हैं ना, बहुत बड़ी बात कर रही हैं, ताकि देखा आपने कितनी जान है अभी कि इस उम्र में भी भावनाओं के लगता कि अभी भी कमी है, मगर फिर भी चाहते हैं कि ये चीज़ हमेशा होती रहे। एक जो चीज़ को लोगों ने नाचीज समझा था, उसको समझे कि इसमें क्या गरिमा है, क्या इसकी रूपरेखा है, इसलिए बहुत बड़ी बात कर रही है ये ठुमरी सम्मेलन कर।
ठुमरी के प्रशंसकों में युवा भी शामिल थे और उनका उत्साह देखते ही बनता था।
जो सावन का महीना होता है ये बहुत ही उत्साहपूर्वक होता है, और इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो बनाए इसमें जाते हैं कि उनका जो भी उत्साह है वो दुगना हो जाए, तिगना हो जाए, और जब इस तरह के आर्टिस्ट आते हैं तो उनको सुनकर के तो वास्तव में ऐसा लगता है कि सच में सावन आ गया है।
ठुमरी बहुत अच्छा अंदाज है गायकी का, बहुत अलग अंदाज है, इसमें राग और लयकारी का जो अंग है बहुत अच्छा लगता, बहुत मज़ा आया।
श्वेता सिंह, BBC दिल्ली।
और अब उन खबरों की बात जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
आज राज्यसभा में सरकार बहुप्रतीक्षित GST विधेयक यानी वस्तु एवं सेवा कर विधेयक को मंजूरी के लिए पेश करेगी। हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस इसे मंजूर होने देगा इसमें संदेह है। पिछले सत्र में इसे लोकसभा में मंजूरी दे दी गई थी। एथेंस में ग्रीस और उसके कर्जदाताओं के बीच ग्रीस के तीसरे बेलआउट पैकेज पर समझौता हो सकता है। इससे ये भी निर्धारित होगा कि कर्ज से बोझिल ग्रीस में इसी साल चुनाव करवाए जाएंगे या नहीं। सोमवार को एक हमले में तुर्की के सुरक्षा बल के 6 सदस्यों के मारे जाने के बाद आज भी तुर्की हिंसा से निपटने की तैयारी कर रहा है। चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट और कुर्द लड़ाकों के खिलाफ तुर्की के बमबारी अभियान के बाद चरमपंथी गुटों ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। डबलिन में मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रतिनिधि इस मुद्दे पर मतदान करेंगे कि संगठन देह व्यापार को अपराध की श्रेणी में न रखने की मांग करे या नहीं। एक लंबी और गंभीर बहस के बाद जब इस पर सदस्यों में सहमति नहीं बन पाई तो मतदान का फैसला लिया गया। माली में उन हमलावरों की तलाश जारी है जिन्होंने शुक्रवार को सेवारे शहर के एक होटल की घेराबंदी की। इस हमले में 13 लोग मारे गए थे। हमले की जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि उन्हें संदेह है इस लड़ाई में मारे गए एक हमलावर बंदूकधारी का संबंध एक इस्लामिक संगठन से है। लेगोस में आज से लेगोस जल सम्मेलन शुरू हो रहा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ नाइजीरिया जैसे पर्यावरण संगठनों ने किया है। ये संगठन 2 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में जल आपूर्ति के विवादग्रस्त निजीकरण के खिलाफ हैं।
और अब इससे पहले कि कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राजधानी काबुल में हुए चरमपंथी हमलों के लिए पाकिस्तान की तीखी आलोचना की है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने एक समिति को नियुक्त किया है जो उन्हें भ्रष्टाचार से निपटने और कानूनी व्यवस्था में सुधारों पर परामर्श देगी। स्वीडन की पुलिस ने स्टॉकहोम में एक फर्नीचर की दुकान में दो लोगों की हत्या के शक में दो को गिरफ्तार किया है। तुर्की में कल एक के बाद एक कई बम विस्फोट हुए जिनमें कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। इराक से मिल रही खबरों के मुताबिक बगदाद के उत्तर पूर्व में स्थित दियाला में 2 बम विस्फोटों में कई लोग मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगले कार्यक्रम यानी कि विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।